पूरा किया, कम से कम 50 पॉइंट्स आ गई। अगर तुम मेरे जीवन में ना होते तो मैं कहां होता। हर एक के लिए ये प्रश्न है। जैसे वो चिंतन देकर चला गया, तो अगर एकदम ही प्रकृति विहीन अस्तित्व है कि जहां पे छत भी नहीं है और नदी भी नहीं है और तालाब भी नहीं है, तो वॉकिंग, जैसे एक पाश्चात्य जगत का एक किताब है, उसमें एक बहुत अच्छा अनुभव एक व्यक्ति ने लिखा है अपना, कि जब मैं छोटा था, जवान था, एक बार मेरे पिताजी से मेरा इतना झगड़ा हो गया कि मैं घर छोड़कर चला गया और चलने लगा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलता गया और चलते चलते ही विचार परिवर्तन हो गया और बाद में लगा, अरे गलती तो मेरी ही है। वॉकिंग के जो एडवांटेजेस है ना, उसमें ये उदाहरण गिनाया जाता है कि चलना केवल चलते गए और चिंतन चल रहा, और फिर उसको लगा कि गलती तो मेरी है और मैं उनको दोषी ठहरा रहा हूं, और फिर वापस आ जाता है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो एक टॉपिक ले लेना, जैसे आप जहां अभी रहते हैं आसपास, यहां से निकलते समय भी जो हमने आपको कहा कि 3 चीजें जो करनी थी वो कौन सी रह गई है जीवन में, जो बहुत इच्छा थी करने की पर परिस्थितियों ने करने नहीं दिया, बहुत उमंगे थी जब आए थे तपस्वी बनने की पर नहीं बन पाए, बहुत उमंगे थी ऐसा ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सेवा करेंगे, वो सेवा करेंगे, इसमें आगे जाएंगे, उसमें आगे जाएंगे, नहीं जा पाए, तो ये प्रोसेस चालू हो गया। तो चलते चलते चलते, तो वॉकिंग इज द आंसर, अगर कहीं पर भी जगह नहीं है तो। और कोई प्रश्न? डिफरेंशिएट ऐसा करेंगे, जैसे आप जैसे ही ज्ञान में आए, आपको यहां बताया गया पवित्र अन्न खाना है, आपने तुरंत बाहर का खाना छोड़ दिया। सोचो जो संसार में लोग हैं, हम उनको अगर जाके कहे आज से बाहर का खाना बंद, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर करे भी, हम उन्हें ज्ञान नहीं देंगे। हमारा एक्सपेरिमेंट, एक व्यक्ति है जिसको हम ज्ञान नहीं देंगे, केवल ये कंडीशन रख देंगे कि बाहर का नहीं खाना, बिल्कुल नॉनवेज बिल्कुल तुमको छोड़ना है, और वो करता भी है 1 मास दमन दबा दबा के। दूसरा व्यक्ति है, हमने उसे ज्ञान दिया, पहले कोर्स हुआ और वो छूट गया। समझ, ज्ञानमयी प्रेममयी समझ, क्या करना है? समझना है, क्योंकि विकार अंधकार है। विकार अर्थात अंधकार, विकार अर्थात प्रकाश का अभाव, विकार अर्थात ज्ञान का अभाव। जिस कमरे में ज्ञान आ जाए, प्रकाश आ जाए, वहां अंधकार तो विलीन कैसे रह सकता है वहां पर? सोचो एक कमरा है जिसमें 1000 साल से अंधकार है। अभी इस अंधकार को हमको निकालना है, तो हम अपनी सेना लेकर गए, उस अंधकार को निकालने के लिए जाएगा वो। हम तलवार चलाए, सबसे लड़ाकू हम है, तलवार से अंधकार निकलेगा नहीं। अंधकार कैसे निकलेगा? प्रकाश से। और प्रकाश आने के बाद अंधकार वहां है ही नहीं, अंधकार का अस्तित्व ही नहीं है, यहां सप्रेशन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो नहीं सकता। वो कहानी में दिखाते हैं कि एक बार अंधकार था, वो भगवान के पास गया और कहने लगा, ये जो सूरज है मुझे बहुत परेशान करता है, मैं थोड़ी देर मुझे रहने भी नहीं देता, जब भी आता है मुझे भगा देता है, मेरा जीवन हैरान कर रखा है इसने, आप इस सूरज का कुछ करो। कौन गया? अंधकार। किसके पास? भगवान के पास। भगवान ने कहा, मेरे सृष्टि में ऐसा अन्याय, मेरी सृष्टि में यह अन्याय, सूरज को बुलाते हैं और कहते हैं कि सूरज ये तुम क्या घोर अनर्थ कर रहे हो, क्यों इतना परेशान कर रहे हो अंधकार को? सूरज कहता है कि क्या ऐसी गलती मैंने वाकई में की है? अगर की है तो उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ, तो मैं माफी मांगू। आज तक वो व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है, और सूरज तो बिल्कुल खड़ा है कि कब मैं माफी मांगू, परंतु अंधकार कभी सूर्य के सामने आ नहीं सकता। जहां अज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां अज्ञान का अंधकार आ नहीं सकता। तो कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे हमने काम की बात की, कौन आकर्षित कर रहा है? देह आकर्षित कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, परंतु वास्तव में यह देह है क्या, इसको समझो। देह को देखना अच्छा लगता है तो देह को ही देखो, परंतु उसके वास्तविक स्वरूप को देखो, तो फिर मोहभंग होगा, तो फिर इस संसार से विरक्ति आएगी। तब तक वो केवल दमन मात्र है, और ये एक दिन से नहीं होगा। एक दिन कोई मर गया और उसकी चिता को जलते हुए देख लिया और थोड़े देर वैराग आ जाएगा, बस थोड़े देर तो सबको आता है, गृहस्थी को भी आता है, सोचता है सब व्यर्थ है, ये पत्नी व्यर्थ, ये बच्चे व्यर्थ, ये संसार, ये घर गृहस्थी व्यर्थ, और शाम को सबके साथ में पिकनिक। माया महाठगनी हम जानी, कबीर ने कहा है, इतना आसान नहीं है। कठिन पाथ ऐसो पंथ कठिन, प्रेम पंथ ऐसो कठिन। ये जो पंथ है प्रेम का, बड़ा कठिन है। और कोई प्रश्न? वो चाहे वो कुछ भी कर रहा, हमें ये सोचना है कि वो महान आत्मा है, हमारा उस आत्मा के साथ कुछ ना कुछ तो लेना देना है, उसके वजह से उतना उससे दुख प्राप्त हो रहा है। और अगर हम बदला लेने की कोशिश करें, अगर हम वही करें वो जैसा वो हमारे साथ कर रहा है, तो हम नए कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हिसाब किताब और बढ़ेगा और प्रगाढ़ होगा वो, और उससे हम छूटेंगे नहीं। इसके लिए यहां जो है साक्षी भाव, शुभ भाव, शुभ कामना, और जो हमें पता है सत्य की कभी हार हो नहीं सकती। एक सन्यासी था, बहुत ही अच्छा सन्यासी, लंदन में। एक बार उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि इसने मर्डर किया है, 23 साल की सजा हो गई। 19 साल जब हो गए तब पता चला कि मर्डर किसी और ने किया था। कोर्ट ने फैसला दिया, अखबारों में भी आया, कि इसको अब छोड़ दिया जाए। सन्यासी कहने लगा कि मुझे, मेरी तो अच्छी साधना यही हो रही है अब। और रही बात आरोप और प्रत्यारोप की, ये तो मुझे पहले से ही पता है कि आप तो किसी को मारने की बात कर रहे हो, मैंने तो मक्खी भी नहीं मारी है आज तक, ये तो मुझे पहले से ही पता था। परंतु मुझे ये भी पता था कि ये मेरा किसी और जन्म का हिसाब किताब है, आपको तो बस उतना ही अभी पता चला, वो तो मुझे तभी पता था, पर मुझे ये भी पता था साथ साथ कि ये मेरा किसी और जन्म का हिसाब किताब था, वो तो चुकतू होना ही था। इसके लिए जो भक्ति में कहते हैं जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, एक दूसरी एक कहानी है कि जिसमें एक राम भक्त होता है, इतनी राम भक्ति करता है, इतना अनन्य भक्त है राम का कि हर चीज में राम का ही नाम लेता है। वो कपड़े बेचता है, बेचता भी कैसे कि राम की इच्छा से कपड़ा खरीदा, राम की इच्छा से कपड़ा बुनाई की, राम की इच्छा से ये कमीज बनाया, और राम ही की इच्छा से ये बेच रहा हूं। हर चीज में राम की इच्छा से, हर चीज में राम की इच्छा से। दिखाया गया है कि एक बार शाम को दुकान से आता है और बैठा रहता है और गुणगान करते रहता है प्रभु का, तो डकैतों की एक टोली वहां से गुजरती है। डकैतों को लगता है कि इसको हम ले जाते हैं, कूली के काम आएगा, जो हम लूटेंगे इसको इसके ऊपर लाद देंगे, तो उसको ले जाते हैं पकड़ के, और फिर एक घर में डाका डालते हैं, सारा वहां से खजाना लूटते और इसके ऊपर लादते हैं, और भागने ही वाले रहते हैं, तो उस समय पुलिस आ जाती है और वो डकैत सारे भाग जाते हैं डाकू। अब ये जो इंसान रहता है बेचारा पकड़ा जाता है, इसको फिर हवालात में डाल देते हैं। गांव के लोगों को जब पता चलता है कि अरे भाई ये तो बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति है, इसको क्यों पकड़ा, फिर भी जज जो है वो सुनता थोड़ी ना है। कोर्ट में जज उसको पूछते हैं बताओ क्या हुआ, वो अपनी कथा चालू करता है। राम की ही इच्छा से दिन भर कार्य किया, फिर राम की इच्छा से शाम हुई, फिर राम की इच्छा से मैं वरांदे में बैठा था, राम ही की इच्छा से वहां से डकैतों की टोली जा रही थी, और राम ही की इच्छा से उन्होंने मुझे पकड़ा और अपने साथ घसीट के लेके गए, और राम ही की इच्छा से उन्होंने डाका डाला और राम ही की इच्छा से सब जो खजाना था मुझके मेरे ऊपर लादा, और फिर राम ही की इच्छा से पुलिस वहां आ गई और राम ही की इच्छा से वो लोग तो भाग गए और राम ही की इच्छा से मैं हवालात में चला गया और हुजूर राम ही की इच्छा से अब मैं आपके सामने हूं। कितना गहरा समर्पण भाव है। सोचो इस भक्त को हटाओ और कोई बीके वहां है। इतना समर्पण भाव है, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, होई सोई जो राम रची राखा। भक्ति में कितना गहन समर्पण भाव है। ब्लाइंड पेथ अलग चीज है, यहां समर्पण भाव की चर्चा चल रही है। तो ये जो हिसाब किताब की जो बात चल रही थी कि सारे हिसाब किताब चुकतू तो होने हैं, वो किसी ना किसी रीति से होगी। धाई विल शाल बी डन, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं धाई विल शाल बी डन, राजी तेरी रजा में। यहां पे जैसे वो समर्पण भाव हमारे अंदर आ जाता है, हमारा जीवन यहां सरल बनता है बहुत सारी चीजों में। वो तो भक्त की कथा थी, अज्ञान की कथा है, उसको अब भूल जाओ। पर यहां मैं बात कर रहा हूं कि जो परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है, जो हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, सोचो हम ट्रेन में बैठे हुए अचानक एक व्यक्ति आता है और गालियां देना चालू करता है और चला जाता है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हमने उसे कभी देखा नहीं ना कभी बात की, उसने बहुत सारी गालियां दी और चला गया। अब ये क्या था? अगर हम सोचे उसने क्यों दी तो हमें तो किताब भी लिख सकते हैं इतना चिंतन हो सकता है उसमें, कितना व्यर्थ संकल्प हमारे चल सकते हैं। इस ड्रामा में जो भी सीन हमारे सामने आ रहे हैं सभी कल्याणकारी है। बाबा ने एक शब्द में कहा है, तुमने जन्म जन्म विकर्म किए हैं, तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ है। ये मत पूछो कौन से पाप है, अगर वो बता दू तो संगम युग का सुखी समाप्त हो जाएगा, इतने पाप किए हैं तुमने। काम विकार से तुमने जितने पाप किए हैं बाबा ने कहा है उतने और किसी से नहीं किए। एक स्त्री थी बहुत अच्छी साध्वी जिसे अपनी पवित्रता के ऊपर बहुत गर्व था। गर्व क्या, अहंकार था। जो अपवित्र थे, जो गृहस्थी थे, उनको वो छोटी दृष्टि नीची दृष्टि से देखती थी। इतना अपनी ब्रह्मचारी के ऊपर उसको विश्वास था, अहंकार था। वो अपने गुरु के पास एक बार पहुंची, ये सत्य घटना है। गुरु को कहा कि मुझे जाति स्मरण कराओ, जाति स्मरण अर्थात पूर्व जन्म में मैं क्या थी वो मुझे बताओ। उसने गुरु ने कहा क्या फायदा इससे, तुम अभी जो हो बहुत अच्छा हो, अच्छी साधना करती रहो करते रहो। उसने कहा नहीं मुझे बताना ही है तुमको। तो वो पूछती है, फिर एक दिन गुरु उसको मंत्र देता है और वो साधनाएं करती है, फिर भी कहा होता ही नहीं, उसे याद ही नहीं आता है। पता नहीं अध्यात्म मार्ग में ये भी एक इच्छा होती है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, क्या था, क्या क्या हमारे पार्ट थे। तो ये वो करती रहती है करती रहती है, सफलता मिलती नहीं। और एक दिन अचानक आधी रात को उसे याद आ जाता है वो क्या थी, और उसी समय भागती है अपने गुरु के पास आधी रात को और कहती है कि मुझे बचाओ। वो कहता है इतना घबराने की क्या बात है, क्या हो गया? वो कहता है, वो कहती है मुझे याद आ गया मैं क्या थी। तो बोलते क्या थी? वो कहती है मैं एक वेश्या थी, मैंने जो जो किया वो मुझे सब याद आ रहा है, अब मैं इससे कैसे छूटू। गुरु कहते अब नहीं मैं कुछ कर सकता, क्योंकि वो जो द्वार था स्मृति का वो खुलता नहीं है, वो टूटता है और स्मृतियों की बाढ़ आती है। फिर इसके लिए बाबा ने कहा तुम्हारे सिर पर 63 जन्म के विकार विकर्मों का बोझ है, कौन सा है वो मत पूछो, अगर बता दू तो मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए प्रकृति का ये नियम है, आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो पूर्व का सारा विस्मृत हो जाता है। इसके लिए हमें पता नहीं हमारा किस आत्मा के साथ कब किस घड़ी किस प्रकार का कौन सा हिसाब किताब आने वाला है। हम यहां बैठे हैं, यहां से हम जा रहे हैं, बस में बैठे, पता नहीं उसमें कोई नई आत्मा आ जाए कि जिससे हमारा बहुत हिसाब किताब है और अचानक हम उसमें बंध जाए। इसके लिए आत्मिक दृष्टि की साधना फिर से यहां आती है। अगर है भी हिसाब किताब तो ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ड्रामा की 10-15 पॉइंट्स है। 24 घंटे में यह भी एक बार याद करना, इस पॉइंट को भी लिख लो सभी, कि 24 घंटे में वंस एटलीस्ट वंस चाहे सुबह अमृत वेले के बाद या शाम को जब बाबा को चाट देते हो, रात को जब चाट देते हो, तब यह अभ्यास करना है कि ड्रामा की वो सारी ही पॉइंट्स एक बार माइंड में ही, मन के मन में रिपीट करनी है। कितनी पॉइंट्स है? लगभग 10-15 पॉइंट्स है। ड्रामा की सारी पॉइंट्स वंस केवल रिपीट करना, पुनरुक्ति करना उसकी मन ही मन में। जैसे पहला, ड्रामा कल्याण, सबको पता है, सब बताएंगे, ड्रामा कल्याणकारी है। दूसरा, ड्रामा फिक्स्ड है, अदली बदली, अदली सदली नहीं हो सकती, वो रिपीट होता है हूबहू, इसमें फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नो वंडर नो सरप्राइज। और राहुल भाई, ये बनी बनाई बन रही है, और ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये ड्रामा सत्य है, इस ड्रामा में जो भी हो रहा है परम सत्य है, ये एक्यूरेट है, इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे निर्वर भाई साहब ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी क्लास में कि बाबा के पास ऐसे 10 ड्रामा आ गए, उन्होंने ये चुना है क्योंकि ये सबसे बेस्ट था वो रिजेक्ट किए, अगर वो चुनते तो पता नहीं क्या हालत होती तुम्हारी। ये जो ड्रामा सिलेक्ट किया है भगवान ने, भगवान को ड्रामा पसंद है, तो साकार महावाक्य है, तो तुम्हें भी पसंद होने चाहिए। ये ड्रामा भगवान को पसंद है, तो ये भी एक पॉइंट है। फिर ये सबसे अच्छे से अच्छा ड्रामा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है और अच्छा, और जो होगा वो तो बात मत पूछो, बेस्ट। ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है, ड्रामा में हर एक्टर वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए था, ड्रामा के हर एक्टर की हर एक्ट और एक्शन एक्यूरेट है, ड्रामा में सभी संपूर्ण निर्दोष है, मेरे साथ जो भी हो रहा है, I alone am responsible for whatever is happening to me in this drama। जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है इस ड्रामा में, मैं स्वयं ही उत्तरदायी हूं। कोई मुझे दुख दे रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है, परंतु भ्रम मात्र है, वही सत्य है। ये सारी पॉइंट्स है, देखो कितनी सारी पॉइंट्स है। ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है, ड्रामा ब्राह्मणों के फेवर में बनाया हुआ है। वाह, जितना हम इस तरह से पॉइंट्स निकालते हैं ना, हमारी बुद्धि की एक्सरसाइज है ये, इसी को चिंतन कहा जाता है। एक चिंतन होता है एकांत में, यह दूसरा चिंतन है, यह है ग्रुप चिंतन, जिसमें एक प्रश्न लाओ और उसका सबसे उत्तर निकालो। हमारे हॉस्पिटल में एक भाई है, बिल्कुल अनपढ़, चेतुराम, पढ़ना लिखना नहीं आता है उसको, कुछ नहीं आता, खाली वो मुरली पॉइंट थोड़ा देर सुनता है बस, 10-15 मिनट, ज्यादा समझ में भी नहीं आता है। उसका काम हॉस्पिटल में यहां की फाइल उधर, उधर की फाइल इधर, बस ये काम है उसका। अभी वो कभी कभी क्लास में आ जाता है। अभी सोचो, हम एक बार एक बहुत गहरे विषय पर डिस्कस कर रहे थे कि इतनी एक 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 नई नई पॉइंट्स कोई कोई निकाल रहा है, सारी पॉइंट्स हो गई, वो बोल रही एक बाकी है, और उसने जो पॉइंट बताई वो किसी को भी टच नहीं हुई थी। हर आत्मा यूनिक है इस ड्रामा में। हमारा बहुत अच्छा चिंतन है, ठीक है, परंतु हो सकता है जो किसी और का चिंतन है वो ऐसा चिंतन हो हमें पता ही नहीं, वो दृष्टिकोण से हमने कभी देखा ही नहीं। जैसे दत्ता भाई और हम बैठे और एक विषय पर चर्चा कर रहे, हम चर्चा कर रहे, उन्होंने पॉइंट बताई, मैंने बताई, उन्होंने बताई, उधर से हमने, फिर राहुल भाई आए, एक ऐसी पॉइंट बता दी कि जो हमारे बुद्धि में ही नहीं आई। हम सोच रहे थे सारी पॉइंट पूरी हो गई, 100 हो गई, और कितनी चाहिए, देयर इज नो लिमिट। बाबा ने कहा है, मैंने अब तक तुम्हें जो सुनाया है एक बूंद मात्र है, मैंने तुम्हें अब तक जो सुनाया है वो बूंद मात्र है, इसके लिए यहां अहंकार की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम बात कर रहे थे ड्रामा की, 24 घंटे में एक बार, एक तो अमृत वेले के बाद या मुरली के बाद या अपने कार्य व्यवहार में बीच में या शाम को या रात को, पर एक बार ये प्रैक्टिस हर एक को करनी है। 24 घंटे में सारी पॉइंट फटाफट रिपीट करो, जैसे ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट, हर एक का पार्ट फिक्स्ड है, हर एक वही कर रहा है, ड्रामा न्यायकारी है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा है, भगवान को पसंद है, मुझे भी पसंद है, वाह ड्रामा वाह, यह गीत है ब्राह्मणों का। कभी भी 24 घंटे में एक बार नियमित, अमृत वेले का टाइमिंग उसका कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आशीष त्रिकोण का अभ्यास करो कमी है वो और पीछे से कोई प्रश्न? बाबा ने कहा है तुम्हारे 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करने के लिए तुम्हें उतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए विकर्मों को विनाश करने में लगता है। इस पॉइंट को भी लिख के रखो। 63 जन्म के विकर्म तो विनाश हो चुके हैं, सोच लो अभी जो विकर्म है वो इस जन्म में ब्राह्मण बने। एक मुरली में बाबा ने कहा अगर तुम किसी को देह देखते हो तो वो भी विकर्म है। देह को देखना अर्थात विघ्न पड़ना। अभी गिनो अपने विकर्म कितने हो गए? नहीं, भाव क्या है? अगर आसक्ति से हो रहा है तो उसमें फिर वो लगाव उत्पन्न होगा। आसक्ति से किया जाए, जैसे एक व्यक्ति था जो जन्मांध था, बचपन से अंधा था। अभी वो तो इतना अच्छा था, उसका जीवन दिव्य था, सब कुछ था, फिर भी वो अंधा क्यों बना बचपन से? तो वैज्ञानिक ने उसको हिप्नोटिक रिग्रेशन किया। हिप्नोटिक रिग्रेशन में पूर्व जन्म में जाते हैं, तो उसके 3rd, 4th, 5th, 6th जन्म में लेके गए और देखा वो जल्लाद था। जल्लाद होता है ना राजा के पास जो ये देता है पनिशमेंट देता है, तो आंखें फोड़ता था वो। अभी अगर देखा जाए तो ये एक कार्य है, राजा ने कहा आंखें फोड़नी है, आंखें फोड़ दी, हो गया अनासक्त होके। परंतु उसको एंजॉय करता था, वो बहुत अच्छा लगता था उसको आंखें फोड़ना ये जो एंजॉयमेंट था उसका ये परिणाम था। कृष्ण निंदा घड़ली मनुन महार जन्म प्राप्ति, मराठी में अवंग है कृष्ण निंदा घड़ली, कभी ना कभी कृष्ण निंदा हुई होगी मनुन महार जन्म प्राप्ति, किसी ना किसी जन्म में हो गई। भक्त अभी ये नहीं कहता है कि ऐसा क्यों हुआ, कृष्ण निंदा हुई होगी कभी ना कभी। और बाबा ने एक मुरली में कहा है जिस जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा है मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। साकार मुरली है बाबा की, जिस जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा। अभी हमने तो ये भाव से कहा ही नहीं था कि उसको वो बुरा लगेगा, हम तो बड़े प्रेम से कहते थे जहां देखूं वहां तू ही तू। परंतु बाबा के साकार महावाक्य जिस जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार दादी जानकी हिस्ट्री हॉल में बैठे थे, बहुत पहले की बात, दादी ने ही सुनाई थी। बाबा कह रहे थे कि ये कृष्ण का नाम डाल दिया है गीता, मेरे नाम के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। साकार बाबा मुरली मतलब अव्यक्त बाबा आके मुरली चल रही थी, तो दादी ने कहा बाबा आपको बुरा लगा क्या? बाबा से पूछा दादी ने कि बाबा आपको फील हुआ क्या? फील हुआ क्या चोट अंदर? तो ऐसा है वो नहीं बता अभी बाबा तो मजाक भी करते हैं ना बहुत बार। एक बार एक बहन ने क्या किया, भोग लगाते थे पहले पहले, तो एकदम गरम गरम भोग था और लेके आया और बाबा के मुंह में डाल दिया अव्यक्त बाप दादा के। तो बाबा ने उसको बुलाया और उसको खिला दिया बाबा भी थोड़ी बहुत प्यार से बुला के। एक बार एक छोटा बच्चा ऐसे डायमंड हॉल में ही छोटा बच्चा वो कोई लेके आया होगा बाबा से, पहले लाइन जाती थी ना एक के बाद एक लाइन 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 लाइन, तो वो छोटा बच्चा था और माँ बाप थे तो वहां जो बैठते हैं उन्होंने बिल्कुल मिलने नहीं दिया छोटे बच्चे को, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। बाबा उसको कुछ देना चाहते थे ऐसे बाबा ने किया पर हाथ नीचे करके उसको आगे भेज दिया। तो बाबा ने थोड़ी देर के बाद वो बच्चा नीचे चला गया था स्टेज के, उसको वहां से बुलाया तो भगवान की गतमत वही जाने, उसके राज्य में उसकी सत्ता में अन्याय नहीं हो सकता है। हर एक आत्मा को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए था। किसी को सब कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, वो उसी का परिणाम है। और जिसको नहीं मिल रहा है अगर वो और दुखी होता है तो उसको और ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे ही संकल्प कर रहे हैं। जो सोचता है मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मुझे यहां ये नहीं है, वहां यहां बेड अच्छा नहीं है, यहां कमरा अच्छा नहीं है, ऐसे कई सारे उदाहरण है मधुबन के कि जहां भाई लोग आते हैं सेवाधारी या समर्पित होने, पहले एक डिपार्टमेंट में, फिर वहां देखा कि यहां ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, दादी के पास गया, दादी डिपार्टमेंट चेंज, एक सत्य घटना, दादी ने कहा ठीक है दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ, दूसरे डिपार्टमेंट यहाँ इंचार्ज ठीक नहीं है, ठीक है यहां से अभी निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ, यहाँ के जो टाइमिंग है ये ज्ञान योग के अनुकूल नहीं है तो चेंज, आज वो घर पे है इसके लिए जहां पर भी हम हैं वही राइट टाइम इज नाउ, राइट प्लेस इज नाउ एंड राइट पर्सन इज यू। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। इसको भी लिख के रखो, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। हो गया शीतल बहन जी, कि और भी है? अच्छा थोड़ी देर है, चलो घनघोर साधारण पुरुषार्थ की पहले परिभाषा सुनो। साधारण पुरुषार्थ अर्थात अमृत वेले उठना, अच्छा योग करना, अमृत वेले के बाद न सोना, चिंतन करना, साधारण पुरुषार्थ। ये साधारण तीव्र पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ करें उसके लिए पहले साधारण पुरुषार्थ क्या है वो बता रहा हूं, कि अमृत वेले उठना, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव, अशरीरीपन का अनुभव, विश्व को सकाश फरिश्तेपन की अनुभूति और पांच स्वरूपों का अभ्यास, उसके बाद में चिंतन मनन, उसके बाद में शक्तिशाली मुरली का चिंतन सुनना, और बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, दिन भर में बाबा से कनेक्शन, शाम का नुमा शाम का योग, रात में भोजन के समय बाप को याद करना, सो जाना, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। इससे दो गुना ऊपर कर दो ये सब बातों को तो वो है तीव्र पुरुषार्थ। तो अगर हम अभी पहले डिसाइड करो, इसके लिए कहा ना मैं कहां हूं वो पहले देखना है, पहले ये पता चल जाए मेरी दुर्गति हुई है तो फिर सद्गति का मार्ग पता चले। पहले ये तो ढूंढे कि मेरी दुर्गति, संसार के लोग मानते हैं कोई पापी है? नहीं मानते। जब मानेंगे तब ज्ञान में आएंगे। अभी जो ज्ञान में आ चुके हैं क्या वो मानते हैं? जैसे कल की मुरली में, कल की जो अव्यक्त वाणी है उसमें एक वाक्य है, दुनिया वाले को कहते हो मैं कौन हूं, ये पता है? अभी स्वयं को पूछो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, यही पहली है, अंतिम प्रश्न और पहला और अंतिम प्रश्न। तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो भी हम अभी कर रहे हैं, और जो मैंने कहा जो करना था वो कौन सी बातें हैं वो लिखो, और भी एक दूसरी तीन बातें लिख सकते हैं, जो करना नहीं है और कर रहे हैं वो तीन बातें लिखो। कौन सी ऐसी तीन बातें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए फिर भी मैं कर रहा हूं? जैसे एक टीवी देखना, सीरियल देखना, फिल्म देखना, मोबाइल पे लंबा लंबा समय बात करना, यहां वहां पैसे खर्च करना, इलेक्ट्रॉनिक्स में टू मच चला जाना, इसमें से कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं करनी, इसकी भी एक लिस्ट बनाओ कि ये मैं कर रहा हूं पर मुझे करना नहीं चाहिए पर फिर भी कर रहा हूं। अच्छा कर रहा हूं तो उसको भी दबाने की कोशिश नहीं करो, सोचो क्यों कर रहा हूं, क्या क्या प्राप्ति हो रही है मुझे, रात को दो दो बजे तक जागने में, इंटरनेट में मुझे क्या क्या प्राप्ति हो रही है, अच्छी लिस्ट बनाओ दो तीन, कि मेरा ज्ञान बढ़ रहा है वगैरह 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 जो भी है, यही कारण देते हैं सब जानकारी इंफॉर्मेशन, समय अनुभूति स्वरूप बनने का है। टू मच इंफॉर्मेशन कॉजेस पीसलेसनेस, इंग्लिश में कहावत है, टू मच इंफॉर्मेशन कॉजेस पीसलेसनेस। बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी नहीं करनी है। और कोई प्रश्न? नॉलेज के हिसाब से जानकारी हासिल करना बहुत अच्छी बात है। वही जो कुछ कर रहे हैं, इसके लिए कहा ना हर एक का पुरुषार्थ जो है ना, इट हैज टू बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू वंस लाइफस्टाइल। हर एक का प्रोफेशन क्या है, सेवा क्या है, अभी हम किसी की नाइट ड्यूटी है उसको ये नहीं कह सकते कि दिन में सो नहीं, हर एक का अलग अलग है। अभी हॉस्पिटल में हम देखते हैं किसी का मॉर्निंग इवनिंग नाइट अलग अलग तीन शिफ्ट्स में, अभी वहां की जो नर्सेस है स्टाफ है किसी का मॉर्निंग होता है, कभी इवनिंग होता है, कभी नाइट होता है। अभी वो कभी मॉर्निंग अमृत वेला मिस हो रहा है तो कभी इवनिंग का योग मिस हो रहा है। परंतु इसमें भी दिनचर्या को सेट करना है। जब हमारी ऐसी ड्यूटी थी कभी हॉस्पिटल्स में, जब हम ड्यूटी करते थे, जब मॉर्निंग ड्यूटी रहती थी तो हम ये सोचते थे अभी इवनिंग में क्या प्रोग्राम करें हमारा, जब नाइट रहती थी तो फिर दिनचर्या में कितना सोना है। अभी एक माया ऐसी है कि नाइट ड्यूटी वालों की, क्योंकि आज नाइट है तो आज दिन भर थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि नाइट करनी है ना तो थोड़ा सो लेते हैं, क्योंकि पता नहीं नाइट में टाइम नहीं मिलेगा। अभी क्योंकि नाइट की है अभी आज दिन में सोना है, फिर दोनों दिन चले गए। ऐसी अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न माया आती है। तो नाइट ड्यूटी करने के बाद में फिर हमको सेट करना है कि अभी मुझे कैसे योग करना है। जैसे स्टूडेंट लाइफ है तो कितना वो भी पढ़ाई करनी है, वो भी इतनी आवश्यकता है, ये ज्ञान योग भी उतना ही आवश्यक है। इसमें हम कैसे क्या करें वो स्वयं ही टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हर एक को अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। आइडियल स्लीप वो डिपेंड करता है किस तरह का कार्य कर रहे हो और कैसी आदत बनी है। जिसको 10 घंटा नींद करने की आदत है उसके लिए 10 घंटा भी कम है, जिसको 4 ही घंटा नींद करने की आदत है उसके लिए वो बहुत है। आदत बदल सकती, वही तो कहा ना, एक नया वो पिंजड़ा और नेवला, वो नया निर्माण करना पड़ेगा। वैराग, वैराग इस संसार से, संसार में वैराग अर्थात छोड़ के जाना नहीं, अनासक्त वृत्ति चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, स्थान के प्रति, जो संसार के आकर्षण है उनके प्रति। हाँ वो सारे याद करो ना थोड़ा थोड़ा। बुद्ध को वैराग कैसे आया, यही सब देखा ना उसने, एक बार देखा और छोड़ दिया। हम रोज देखते हैं दिन रात, न मालूम कितने लोग हमारे सामने ओम शांति हो गए, पर हमारा राग ऐसा है कि वैराग को अंदर आने नहीं देता। ओम शांति।